में बुलाए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पहुंच गए हैं क्लास नंबर 16, जिसका नाम है यर्दन की नदी का रहस्य। यर्दन की नदी का रहस्य क्लास नंबर 16। ये यर्दन की नदी का विषय बहुत खास विषय है। ये एक ऐसी नदी है जो पूरे इजराइल, जितना इजराइल देश की लंबाई है उसके साथ साथ चलती है, उसकी लंबाई के जितनी है। और बाइबल में ये बड़ी खास नदी है, क्योंकि हम देखते हैं एलीशा के पास, जब वो नामान जो सीरिया का सेनापति था, सीरिया के राजा का सेनापति था नामान, जिसको कोर हुआ था, तो एलीशा के पास गया तो उसने कौन सी नदी में उसको बोला जाके नहाओ? यर्दन की नदी में 7 डुबकी मारो और तुम्हारा कोर क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, है ना? तो ये बात पढ़ लो, दूसरा राजा 5:10, दूसरा राजा 5:10।
तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा।
देखो, तो देखते हैं एलिशा ने नामान को 7 डुबकी लगाने के लिए बोला यर्दन नदी में। उसके बाद एलिया ने जब चद्दर लेके उसको मारा था पानी को, वो कौन सी नदी थी? यर्दन नदी। पढ़ लो दूसरा राजा 2:13-14, 2:13-14।
फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई और जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यर्दन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उससे गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है?
किसमें मारी?
जल पर, यर्दन में। ठीक है ना?
ठीक है, तो पढ़ लो, ये बात आगे आ जाएगी।
जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। आगे
तो नहीं, ये तो कहाँ पे खड़ा हुआ? फिर से पढ़ो 13:14।
13:14, फिर उसने एलिया की चक्कर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यर्दन के तट पर खड़ा हुआ।
यर्दन, देखो यर्दन में मारा। इससे पहले एलिया ने भी यर्दन में मारा था। पढ़ लो 8वें वचन में, इसी के 8वें।
तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंट ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल पार उतर गए।
तो देखो ये भी यर्दन नदी में सब हो रहा है। उसके बाद योशुआ 1:1-3 40 भटकने के बाद।
अच्छा, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर देश की,
किसके? यर्दन पार। तो यर्दन पार करके कहाँ पहुंचे? वायदा की हुई जो धरती थी ना, 40 भटकते रहे ऐसे उसके इर्द गिर्द पहाड़ के, उसके बाद जब पहुंचे जहां परमेश्वर ने वायदा किया था, तो यर्दन नदी क्रॉस करके पहुंचे और प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा। तो ये यर्दन ही क्यों है ना? यर्दन नदी ही क्यों बार बार, क्या खासियत है यर्दन नदी में जो बाइबल में बार बार आ रही है, और इसका क्या महत्व है? आज तो हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए इस गहराई को जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ये यर्दन नदी के बारे में, ये कैसे बनती है, कैसे पानी आता है, सब सब पहले देखेंगे। सबसे पहले यर्दन नदी जो है उसकी शुरुआत जो होती है हर्मोन का पहाड़ है, एक लेबनान में हर्मोन का पहाड़ है, पहाड़ का नाम है हर्मोन, जो 9230 फुट ऊंचाई पे, समंदर के लेवल से 9230 फुट ऊंचा, ठीक है, जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, वहां से शुरुआत होती है इसकी। क्या होता है जब पहाड़ पे ओस गिरती है ना, पहाड़ कैसा होता है, ऐसा ना, ऐसा ही होता है ना, ऐसा और ऐसा है ना, पहाड़ ऐसा होता है, तो जब इस पे ओस गिरती है तो ओस चारों तरफ से ऐसे और ऐसे है ना, ऐसे चोटी रहती है, तो चारों तरफ से, हाँ चार, तो चारों तरफ से पानी जो है वो आता है नीचे ओस का, और जो पहाड़ का बेस है उधर है एक झील जिसका नाम है हुला,
ऊपर
हुला झील ऊपर, तो हुला झील जिसे लेक मेरोम, मेरोम भी बोला जाता है,
लेक मेरोम,
हाँ, इतना सुंदर साफ और स्वच्छ पानी है कि मतलब बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पियो, तो मतलब रियल मिनरल वाटर जिसे बोलते हैं, हम मिनरल वाटर की बोतल लेते हैं ना हम, 15-20 रुपए की मिलती है, वो होता भी नहीं है, लेकिन वो असली, हाँ असली मिनरल वाटर। ठीक है, तो क्या होता है, पहाड़ से ओस गिरी, ओस नीचे आई लेक खुला में, लेक खुला जो झील है वो ऐसे, फिर अभी पहाड़ से नीचे भी तो गिरना है, तो थोड़ा पानी चल के क्या करता है, एकदम से झरने के जरिए क्या करता है, नीचे गिरता है। अभी जब पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो क्या करता है, जब धरती पे अभी बारिश गिरती है, ठीक है, बारिश का फ्लो तो चलो तेज होता है, झरना क्या होता है, इतना सारा पानी एकदम से, तो क्या करेगा, खड्डा डालेगा, जब खड्डा डालेगा तो उसमें क्या होगी, मिट्टी मिक्स होगी, होगी ना, तो जब ये झरने से पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें मिल जाती है मिट्टी, और मिट्टी मिलने के बाद क्या होता है कि समंदर के, एक गलील समंदर है, ऐसे चल के पानी, वो अभी ऊपर था पानी साफ स्वच्छ, लेकिन नीचे आया जब क्या हो गया, मिट्टी से
गंदा,
पानी गंदा हो गया, थोड़ा चलता है और गलील के समंदर में जाके मिल जाता है। गलील के समंदर में जाके मिलने के बाद ये तो हो गया जो पहाड़ से पानी आया गलील में एंटर हो गया, अभी दूसरी तरफ निकल भी रहा होगा ना गलील से, तो गलील से जो पानी निकलता है वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे राउट है, 55 मील का जो रूट है, ऐसा स्प्रिंग टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा जाके एंड होता है डेड सी में, एक जगह है डेड सी, वहां पे पानी गलील के समंदर का जो है जाके गिरता है। ये है तस्वीर, ये पहाड़ है जिसके चारों तरफ से गिरी ओस, और ये झील बनी हुला, हुला से पानी गया नीचे और जाके मिल गया गलील के समंदर में, गलील के समंदर से निकला मिक्स पानी, गंदा पहले जो था वो भी, और वो भी टेढ़ा मेढ़ा चला और एंड हुआ गलील का, सॉरी डेड सी। और मैंने जैसे बोला था ना, ये पहाड़ है 9230 फुट ऊंचाई पे, लेकिन ये जो डेड सी है ना, जिसे मरा हुआ समंदर बोलते हैं, ये 1350 फुट नीचे, समंदर के लेवल से 1350 फुट नीचे, ठीक है, तो ये डेड सी जो है इसके बारे में हैरानी वाली बात यह है कि 6 मिलियन टन यानी 60 लाख टन पानी रोज इसमें जाता है, ना तो इसमें ओवरफ्लो होता है और ना ही ये कभी बोलता है कहीं निकलता है पानी, और ना ही ये बोलता है बस मैं भर गया हूँ, पानी जाता रहता है, पता नहीं समाता रहता है। ठीक है, तो ऐसे होती है इस यर्दन नदी का अंत। ये तो बात हुई इसकी। अभी हमारे सीखने के लिए इसमें क्या है, है ना? तो इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। यर्दन नदी में जो 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 सोर्स है यर्दन नदी का, हुला लेक, जो हुला झील है जो हरमोन के पहाड़ पे है, वो एकदम से नीचे गिरती है। ये हमने हमारे 11वें चैप्टर में क्या पढ़ा था पुराने नियम के महत्व में, कि बाइबल में बहुत सारे नमूने हैं लेकिन उसकी कुछ असलियत है। तो ये भी एक बहुत सुंदर नमूना है, यर्दन नदी भी जो है बहुत सुंदर नमूना है। वो क्या है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वो पहाड़, जो पहाड़ है ना हरमोन का पहाड़ जो बहुत ऊंचा है, वो तस्वीर है किसकी, पिता परमेश्वर की महिमा की। पढ़ लो यशाया 57:15। यशाया
15, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ।
सो ऊंचाई पे परमेश्वर की महिमा, तो पहाड़ का मतलब है परमेश्वर खुद, पिता परमेश्वर। अभी पहाड़ पे क्या गिरता है,
ऊंचे पर बात करता
है, पहाड़ क्या है परमेश्वर। अभी पहाड़ पे क्या गिरती है, ओस, ओस ना, ओस का मतलब क्या है, भजन संहिता 133:2-3। भजन संहिता 133:2-3।
यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया।
आगे,
यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है, यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है।
तो ये अंडरलाइन कर लो, ये ओस का मतलब है पवित्र आत्मा, उसका मतलब है पवित्र आत्मा, क्योंकि जिसको भी परमेश्वर अभिषेक करता था तेल से, और उस तेल को क्या बोला, ओस के समान है, और वो तेल क्या तस्वीर होती थी, परमेश्वर की आत्मा की, अभिषेक करने की, मसा करने की, सही बात है। तो तेल, ये जो ओस है, ओस का मतलब है पवित्र आत्मा। अभी ये चार साइड से आती है ना, चारों साइड से आती है ना, चारों तरफ से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है परमेश्वर के चार कैरेक्टर। एक्चुअली ये मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, लेकिन आज मैं इतना बता रहा हूं, परमेश्वर के चार स्वभाव हैं, मेन चार स्वभाव। कौन कौन से, सबसे पहले प्रेम, उसके बाद न्याय, उसके बाद ज्ञान, और उसके बाद पावर, शक्ति, विजडम, लव, पावर एंड जजमेंट। ये चार स्वभाव है परमेश्वर के। ये प्रकाशित वाक्य 4 चैप्टर के बारे में जब हम पढ़ेंगे फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये चार गुण हैं परमेश्वर के, कहने का मतलब चार गुण। अभी ये चार के चार गुण परमेश्वर ने किसको दिए, शक्ति, न्याय, समझ और प्रेम किसको दिए? आदम, पूरी मनुष्य जाति। मनुष्य जाति के पास ये चारों, आपके पास शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, समझ है, प्रेम है, न्याय करते हो, ये गलत है ये सही है, करते हो, चारों के चारों किसको दिए? इंसान को दिए। ये बात में कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है उत्पत्ति में, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप
बनाया
और अपने जैसा बनाया, मतलब अपनी परछाई पे। तो जो गुण परमेश्वर के थे वो किस में डाले? इंसान में भी डाले, सही है। तो ये चार, तीन, चारों तरफ से पानी, जो उसका पानी गिर रहा है, इसका मतलब है वो चार स्वभाव, वो चार गुण जो परमेश्वर के हैं, उसने किसको दिए? मनुष्य को दिए। और वो जो झील है ना, हुला झील, हुला झील का मतलब पता क्या है? बड़ी सुंदर है, संपूर्ण है, अच्छी है,
हुला
हुला हुला हुला, बड़ी सुंदर है। इसका मतलब है परमेश्वर की बनाई हुई सुंदर और संपूर्ण सृष्टि। कौन? आदम। हुला लेक क्या है? आदम। पहाड़ परमेश्वर, ओस पवित्र आत्मा, और चार, ये जो चारों तरफ से पानी गिर रहा है, नीचे पानी ऊपर से नीचे गिर के क्या बनता है? झील बनाता है। तो ये चार परमेश्वर के स्वभाव से परमेश्वर ने एक मनुष्य बनाया, तो चारों के चारों स्वभाव उसको दिए। वो था पहली बड़ी सुंदर सृष्टि आदम, ठीक है। और ये बना किससे? परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति से। पढ़ लो प्रकाशित उत्पत्ति 2:7 और सबोपदेशक 12:7।
तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नसलों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया।
तो ये जीवन का सांस क्या था? परमेश्वर का आत्मा, सही ना? हमने पढ़ा ना, वो बोलता मैं परमेश्वर का आत्मा मेरे कहाँ है? नसलों में है, सही बात है। सबोपदेशक 12:7 पढ़ लो। जी,
तब मिट्टी ज्योति तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी।
देखो, तो ये हुला झील कौन है? परमेश्वर की बनाई हुई बड़ी सुंदर संपूर्ण सृष्टि आदम। पाप करने से पहले आदम क्या था? संपूर्ण, सुंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मिलावट नहीं, साफ सुथरा। लेकिन बाद में क्या हो रहा है? अभी ये झील का पानी क्या कर रहा है? तो एकदम से नीचे गिरा, मतलब जब आदम ने क्या किया? पाप। जब पाप किया तो क्या मिक्स हो गया? वो संपूर्णता, वो सुंदरता में गंदगी मिक्स हो गई, जिसकी वजह, जिसका दंड क्या था? पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमिया 5:12 पढ़ लो। ये है वो एक गिरना, पानी का गिरना। जी,
इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी विधि से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई।
देखो, तो एक से ही, यानी आदम जो हुला लेक थी वो क्या हो गई? गिर गई, गिर गई। और जब गिर गई तो जब नीचे जमीन में मिली जाके, तो सारा पानी क्या हो गया? यानी आदम की सारी संतान पाप में गिर गई। ये बात पढ़ लो उत्पत्ति 6:5 में।
योवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। आगे भी
निरंतर बुरा होता है। बस देखो इतना पाप बढ़ गया धरती पे पहले संसार में आदम की संतान में कि उनकी सोच ही गंदी थी। इसी तरीके कैसे हुआ, जब दूत आए थे परमेश्वर की ओर से मदद करने, लेकिन दूतों ने क्या किया, आके देखा कि इंसान की जो बेटियां हैं वो तो सुंदर हैं, तो शरीर में प्रकट होके उनसे शादियां की, ठीक है, उनके आगे बच्चे पैदा हुए जिनको नेफिलियम, वो आधे दूत थे आधे इंसान, तो बड़े बड़े थे, जायंट जैसे बोलते डैंप, नेफिलियम, ठीक है, डैंप जैसे बोलते आप। तो ये है मिक्सचर, गंध मिक्स हो गया उसमें, तो ये पानी थोड़ी देर चल के फिर क्या होता है, गलील के समंदर में जाके मिल जाता है। गलील के समंदर का मतलब है बहुत बड़ा पानी का स्थान। समंदर क्या होता है, बहुत बड़ा पानी का स्थान, तो इसका मतलब है पहले संसार का अंत जल प्रलय से, पहले संसार का अंत जल प्रलय से, ठीक है। तो क्या हुआ, पहाड़ से यानी परमेश्वर से बनाया गया आदम गिरा, आदम की संतान गिरी, मिक्सचर हो गया दूत और उसका ब्लड इंसान का, पूरा गंध ही गंध था, जाके किस में मिल गया, समंदर में, यानी पहले संसार का अंत। उसके बाद यहाँ पे तो एंड नहीं होता है, क्या होता है, पहले संसार में बचने वाले कितने थे,
8 लोग।
तो समंदर में अंत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से गलील के समंदर का पानी निकल रहा है ना टेढ़ा मेढ़ा, तो इसका मतलब 8 लोग जो बचे जल प्रलय से, ठीक है, वो जो बचे उन्होंने भी, नूहा और उसका परिवार, उसके बाद जितनी भी दुनिया आई सबने क्या किया, फिर भी नहीं सुधरे। ये बात पढ़ लो यशाया 59:69, वो जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ना, आठ,
शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और ना उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं।
उनके पथ क्या है, टेढ़े, सीधा रास्ता नहीं पकड़ना है, टेढ़ा ही पकड़ना है। सभोपदेशक 7:29,
सात का उनतीस
जी,
देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं।
तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते का मतलब है जो गलील से निकलता है, दूसरे संसार में भी जो इंसान ने रास्ता इख्तियार किया वो भी क्या किया,
टेढ़ा मेढ़ा।
नीति वचन 14:12 में पढ़ लो,
ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है।
उनको लगता है ये ठीक है लेकिन अंत में क्या मिलती है, मृत्यु। अभी ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चल के कहाँ खत्म हो रहा है, डेड सी का मतलब है कब्र, मरा हुआ समंदर यानी कब्र। कब्र कभी एंड नहीं बोलती, आपने देखा होगा गाड़ते जाओ जितने डगाड़ने गाड़ते जाओ, वो नहीं बोलती, नहीं पहले यहाँ है मत करो, आओ आओ आते जाओ, भरती नहीं कभी, ठीक है। ये पढ़ लो नीति वचन 30:16 जी,
अधोलोक और बाद की को भूमि जो जल पी कर तृप्त नहीं होती और आप जो कभी नहीं कहती बस।
कबर कभी नहीं बोलती कि बस 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 आते जाओ, कोई बात नहीं, बहुत जगह है, आ जाओ सब आ जाओ।
ये अभी फिर दोबारा से ये मेरा यहीं पर ध्यान लगा, ये हिंदू लोग समझते हैं अधलोक का गलत अर्थ लगाते हैं। अधलोक का एक्चुअली अर्थ है कबर,
कबर
जो हमारे बाइबल में है, लेकिन ये लोग उसका गलत अर्थ लगाते हैं, गलत अर्थ लगाते।
तो ये है कहानी यर्दन नदी की, मरा हुआ समंदर जो 1300 फुट नीचे है, नीचे तो कब्र भी क्या होती है, धरती के लेवल से नीचे, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि शुरुआत 9000 फुट ऊंचाई से होती है और एंड 1300 फुट नीचे होता है। तो ये दिखाता है मनुष्य जाति का गिरना। परमेश्वर ने तो संपूर्ण बनाया था इंसान को, आदम को, लेकिन वो क्या हो गया, भयानक तरीके से गिर गया। ये समंदर का लेवल है जानवरों का, लेकिन जानवरों से इंसान को क्या रखा, बहुत ऊपर रखा, लेकिन मनुष्य जाति इतने बुरे तरीके से पाप के रास्ते में गिर गई कि जानवरों से भी बदतर हो गए, ठीक है। तो इसको एक नमूने में दिखाया है, मनुष्य जाति के गिरने को एक नमूने में दिखाया है। पढ़ लो वो दानियल 4:32-37 तक। राजा नेबुकदनेज़ार जानवरों की तरह कर दिया, शुरू कर दिया। हाँ,
और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के घास चरेगा और 7 साल तुझ पर बीतेंगे।
हाँ,
जब तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रवता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है, उसी घड़ी वह वचन नबूकदनेज़र के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में दिखती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाव पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझे नबूकदनेज़र ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन कहा और जो जीवित सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। पृथ्वी के सब रहने वालों उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है।
37 तक हो गया,
नहीं अभी नहीं हुआ। और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों होगी और मेरे राज की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया।
तो ये एक बात आपने अभी नोट की, ये उससे कोई नहीं कह सकता कि तूने ये क्या और क्यों किया, क्या और क्यों किया, इसको अंडरलाइन करो क्योंकि इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। इसका 32-37 तक इसका मतलब पता क्या है ब्रदर, मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी जितने भी ये लोग हैं इस संसार में या कहीं पे भी, या ईसाई या कोई भी, उन पे अगर कोई परमेश्वर ने विपत्ति डाली, परमेश्वर की ने अनुमति दी है उन पे विपत्ति की, तो वो परमेश्वर की योजना, उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते ऐसा क्या और क्यों किया। कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो जब हम किसी, आपने देखा होगा कई लोग रोते वक्त भी जब कोई मर जाए, हे रब्बा तू क्या कर दिया, ये तूने ऐसा क्यों कर दिया, ये वो ऐसा
क्यों मार देता, मैं लेता।
तो जब हम कई बार क्या बोलते हैं, हम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी बनने की कोशिश करते हैं, हम तरस खाते, हमें एक्चुअली तो तरस खाते हैं, लेकिन वहां पे हम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी बनने की कोशिश करते हैं। हमें ये समझना है कि ये चीज, ये योजना परमेश्वर ने इसके जीवन में रखी है बस, और हमें बस मानना है परमेश्वर आप तो जो कर रहे हो वो सही है, वो ही सही है। हम तो, हमारी सोच छोटी है, हम छोटा देखते हैं। आज मैं अभी आ रहा था रास्ते में तो एक बहन का फोन आया, बोलती ब्रदर जिस घर में मैं काम करती हूँ उनके पिताजी को तो कैंसर है तो प्रार्थना करनी है। मैंने बोला वो जीवन प्राप्त करके क्या फायदा जो फिर मर जाना है, आपकी जिंदगी 4 साल बढ़ जाएगी, 5 साल बढ़ जाएगी, इतने में खुश, इतने में खुश, मरना तो फिर भी है ना। लेकिन मैंने बोला मैं आऊँगा, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे परमेश्वर के आगे, लेकिन परमेश्वर कार्य तब करेगा अगर उसके जीवन में कोई परमेश्वर की योजना हुई तो, नहीं तो परमेश्वर अपने अपने वफादार लोगों को क्यों मरने देता, पतरस और ये सब सबको क्यों मरने देता। ठीक है, तो इस घटना में हम तस्वीर देखी जा रही है कि नेबुकदनेज़ार 7 काल तक, यानी 7 समय, 7 टाइम्स, 7 काल तक क्या बना रहा, पशु बना रहा। 7 काल बीतने पर क्या हो गया, उसकी समझ लौट आई, अरे परमेश्वर क्या हुआ। ऐसे ही ये मनुष्य जाति पे 7 काल बीतेंगे और 7 काल बीतने के बाद मनुष्य जाति पहचानेगी, वाह परमेश्वर क्या योजना और क्या तू है, तब पहचानेंगे। ये 7 काल की स्टडी तो हम आने वाले समय में करेंगे, आज तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं। तो बात यहाँ हो रही है पहले और दूसरे संसार की, यर्दन नदी का जो पूरा जो काल कालकारिणी है वो है पहला और दूसरा संसार। कैसे, मनुष्य की शुरुआत से लेके मनुष्य का अंत, शुरुआत ऊंचाई से होता है लेकिन अंत मृत्यु में होता है, यानी कब्र। ठीक है, ये सारी तस्वीर दिखाई है किसने, परमेश्वर ने, यर्दन की नदी में। लेकिन बिना पवित्र आत्मा तो ये भेद प्रकट नहीं हो सकते, ये बहुत बड़ा रहस्य है, कोई नहीं जानता यर्दन नदी का क्या महत्व है, क्या उसमें खासियत है, क्यों यर्दन नदी ही आ रही है, और इसके बीच में कौन ले रहा है बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह। यानी इस संसार में, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आए और जीवन पूरा किया और परमेश्वर की योजना को पूरा किया। लेकिन क्या ये अंत है मनुष्य जाति का, नहीं 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 परमेश्वर की कृपा से ये अंत नहीं है। अच्छा समाचार सुनोगे, हिजकियल चिनात्मक भाषा में 47:1 पढ़ लो,
फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डिलीवरी के नीचे से एक श्रोता निकल कर दूर की ओर बह रहा था।
एक श्रोता, देखो एक 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 पानी चल रहा है, वो पढ़ लो आगे, पढ़ते जाओ 12 तक अभी।
बह रहा था, भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और श्रोता भवन की दाहिने और वेदी की दक्षिण और नीचे से निकलता था।
जी,
तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर बाहर से घुमा कर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस छोटे को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तथा उसने 3000
जल कहाँ तक था,
टखनों तक था,
टखनों ये एंकल दिखते आपके उधर पैर के ऊपर जो जगह एडी के पास, तो आगे फिर आगे लेके गया तो पानी कहाँ तक था,
उसने 3000 हाथ माप कर जल में से चलाया
और घुटनों तक, मतलब घुटनों तक आ गया, अब यहाँ पे आ गया।
हाँ,
आगे गया तो कमर तक, उसके और आगे गया तो छाती तक, उसके और आगे गया तो डूबने जितना डूब गया। पढ़ लो, पढ़ते
जाओ। और जल कमर तक था, तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटा कर पहुँचा दिया। लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, ये सूखा पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अरावा में
उतर कर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ वह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत जाएंगे, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा।
मछली का मतलब समझते हैं आप? मनुष्य जाति, प्रभु यीशु मसीह पत्रस को क्या बोलते हैं?
मनुष्य
पकड़वाले।
और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे, ताल के तट पर मछुए पकड़े खड़े होंगे और एन गादी से लेकर एन ग्लेम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर किसी भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेंगी, परंतु ताल के पास जो दल दल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने के योग फलदायी वृक्ष उपजेंगे।
देखो तो ये तस्वीर दिखाई जा रही है एक नदी की जो जीवन दे रही है, जो क्या दे रही है? जीवन। और ऐसी ही नदी एक प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं 22:1-2 तक।
फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई।
जीवन के जल की नदी, पहली नदी कौन सी थी? मृत्यु वाली है ना, नीति वचन 14:12 में मृत्यु की ओर लेके जाती है, लेकिन ये नदी है जीवन की नदी, जीवन के जल।
बिल्लोर क्या?
बिल्लोर मीन क्रिस्टल, साफ सुथरी क्रिस्टल।
झलकते जीवन जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के
सिंहासन से निकलती है, यानी परमेश्वर, सिंहासन का मतलब राज्य, सिंहासन का मतलब क्या है? राज्य,
परमेश्वर के राज्य।
हाँ हाँ।
उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी।
हाँ।
नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था,
जीवन का वृक्ष भी था। चलो आगे।
उसमें 12 प्रकार के फल,
12 प्रकार के फल लगते थे,
हर महीने फलता था,
वो फलता था हर महीने,
और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग
चंगे होते थे। देखो
और
ये बस तो ये नदी देखो जीवन की नदी है, ये परमेश्वर का वचन दिखा रहा है कि परमेश्वर के राज्य में जीवन दिया जाएगा, परमेश्वर के राज्य में जीवन दिया जाएगा सबको, सबको, और मरे हुए समंदर की पानी को भी ताजा कर दिया जाएगा, मतलब उसको भी अच्छा कर दिया जाएगा, हीलिंग मिल जाएगी। ये पढ़ लो 8 और जो हेजिकियल पढ़ रहे थे ना उसका 8:9, 47 का 8:9।
तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराब में उतर कर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा।
देखो पहले उसका जल अच्छा नहीं था, लेकिन उसका जल भी अभी क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा।
जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत से अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत ही हो जाएंगी।
तो ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि मरे हुए समंदर यानी डेड सी, जहाँ पे कोई जीवन नहीं है, मृत्यु है, कब्र, उसको जीवन मिल जाएगा, वो पानी मीठा हो जाएगा और आप सोच रहे होंगे या पूछ सकते हैं, ये जीवन की नदी है क्या? तो ये तो 47:1 आपने पढ़ लिया है, प्रकाशित वाक्य 22:1 भी पढ़ लिया है, एक और वचन पढ़ लो, भजन संहिता 46:4।
चार। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में प्रधान परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है।
देखो, आनंद होता है, ठीक है। और प्रकाशित वाक्य 22:17 में पढ़ लो ये जीवन की नदी के बारे में बार बार। तो ये जीवन की नदी 17
आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाली भी कहें आ, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वे जीवन का जल टेंट में पिए।
जीवन का जल मुफ्त, फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। इसका जीवन का जल पता क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के राज्य में दिया जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं फ्री मिला है और फ्री बांटते हैं, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और पाप से छुटकारा पता कैसे हो सकता है मनुष्य जाति का? सत्य के जरिए से, यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य। पढ़ो यूहन्ना 17:17। जी,
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है।
तो पाप से चंगाई सिर्फ और सिर्फ सत्य की शक्ति से हो सकती है और किसी चीज से नहीं। आप नहीं बदल सकते किसी को, सत्य बदल सकता। हम, आपने और मैंने ये तजुर्बा देख लिया है, चख लिया है इस बात, सच्चाई का इफेक्ट हम पे होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है? ऐसे ही जब इनको सत्य दिया जाएगा, इन लोगों को जब इनकी समझदारी की आंखें खुलने का समय आएगा, तो क्या होगा? इनको भी चंगाई मिलेगी, इन पे भी इफेक्ट होगा, इन पे भी प्रभाव पड़ेगा, ये भी बदलेंगे। मैं और आप बदलने वाले किसी को नहीं है, सत्य बदलेगा, परमेश्वर का वचन बदलेगा। और ये एकाएक नहीं होगा, परमेश्वर का राज्य आया और सब जी उठे और एकाएक हो गया, नहीं। कैसे दिखाया उसमें? पहले पानी कहां तक है? पहले पानी है यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर तैरने लायक, मैं चल नहीं सकता। तो इसका मतलब है परमेश्वर के राज्य की जो बहाली है ना, वो एकाएक नहीं सब सारे संसार पे एकदम प्रकट हो जाएगी, नहीं। इसराइल से राज्य शुरू होगा, पहले इसराइल में होगा, इसराइल से न्यूज आएंगी, अरे उनके मरे हुए वापस आ गए, अब्राहम वापस आ गया, याकूब वापस आ गया। धीरे धीरे ऐसे फ्लो करना शुरू करेगा, धीरे 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 धीरे, फिर यहां तक पहुंचेगा, फिर यहां तक पहुंचेगा, फिर यहां तक पहुंचेगा, फिर सबसे अंत में जो स्वीकार करेंगे सत्य को वो होंगे मुसलमान। मुसलमान सबसे एंड में स्वीकार करेंगे सत्य को। देखो, ये है लेवल जो बताया है ना, ये है, ये पढ़ लो बात, यशाया 2:3, यशाया 2:3।
बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा।
ये लो, कहाँ से निकलेगा ये देख लो,
यरूशलेम से, क्योंकि परमेश्वर का है यरूशलेम से पैदा हो गए,
यरूशलेम इज़राइल से निकलेगा परमेश्वर का वचन, जलंधर से नहीं, इंग्लैंड से नहीं, कहां से? यरूशलेम से,
यरूशलेम की राजधानी उसकी तो इजराइल की राजधानी समरिया
है, लेकिन अभी तो एक ही है इजराइल, अभी उसकी यरूशलेम है। ये उस समय की बात है जब सुलेमान की मृत्यु के बाद ये दो बंटवारे हो गए थे, तो दो भाई एक तरफ हो गए थे, दस एक तरफ हो गए। अभी बाद में अभी 1948 में बनाया ये इजराइल देश, 14 मई 1948 में
अभी
यरूशलेम है। तो ये देख लो बात दिखाई है पानी के लेवल में बार बार, और हमने प्रभु यीशु मसीह के राज्य के काम में हमने देखा उसके पास दो चाबियां हैं, एक तो मृत्यु की, एक तो नरक की। नरक की किताब क्लास में पढ़ा ना पिछले प्रकाशित वाक्य 1:18, उसके हाथ में दो चाबियां हैं, एक मृत्यु,
एक जिंदा उसके भी मरे हुए
हैं,
एक मरे हुए जो कब्र,
जो जीवित, यस, दोनों को जो जिला उठेंगे वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह दोनों को जीवित कर देंगे, ठीक है जी जी जी, मतलब कि उनपे से मृत्यु का दंड खत्म हो जाएगा, जो जीवित हैं, जो मरे हुए हैं वो जीवित हो जाएंगे। तो ये पुनर्थान के समय की बात है। तो फिर हम क्या देखते हैं अंत में, जो देखते हैं पत्ते, फल हैं, पत्ते हैं, है ना, बोलते नदी के साइड पे क्या है,
12 फल के वृक्ष,
एज़ेकियल 47:12 में पढ़ो, सैतालीस का बारह,
नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदार वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और ना उनका फलना भी कभी बंद ना होगा।
तो ये दरख्त पत्ते और फल, प्रकाशित वाक्य में फल है ना, 12 तरह के फल लगते हैं और भांति भांति के लोग चंगे होते हैं, है ना। तो ये पेड़ पत्ते और फल, हम वापस जाते हैं अदन की वाटिका में, वहां पे क्या था, एक जीवन का वृक्ष, प्रकाशित उत्पत्ति 3:22 पढ़ो। ये जीवन के वृक्ष का मतलब था अनंत काल का जीवन, सदा का जीवन, बिना मृत्यु वाला जीवन।
फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले वृक्ष बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़।
जीवन के वृक्ष मतलब जीवन का वृक्ष का क्या मतलब है, अनंत काल का जीवन, यानी मर नहीं सकता,
अमरता नहीं
मतलब अनंत काल का जीवन, अमरता कुछ और चीज है,
नहीं तो वो अमर ही है,
अमर हो जाएंगे, लेकिन अमरता परमेश्वर का लिए है। तो अमर, हाँ, तो क्या होगा कि उनको अनंत काल का जीवन, इटर्नल लाइफ जिसे बोलते हैं, सदा का जीवन, सदा का जीवन, ठीक है, सदा का जीवन दिया जाएगा। वो है वो पेड़, सदा का जीवन है ये जीवन का वृक्ष, ठीक है। और ये जो पेड़, ये पत्ते, पत्ते किस चीज में काम आते हैं, इंडिया में तो ये बहुत बड़े आयुर्वेदा में बहुत सारा काम, औषधि के काम, आपने तुलसी दी ना उस दिन मुझे, औषधि का काम करते हैं ना। तो ये पत्ते, पत्तों से क्या मिलती है, चंगाई, शारीरिक तौर पे भी, दिमागी तौर पे भी, अंदरूनी तौर पे भी, सब तरीके से हमें क्या मिलती है, चंगाई। तो पत्ते बीमारी से हमें क्या करते हैं, दवाई का काम करते हैं, जिससे हमें बीमारी से चंगाई मिलती है। तो इस पत्ते को नाम दिया गया है बाइबल में सुधार का समय। प्रेरितों के काम 3:21 और मत्ती 19:28।
प्रेरितों के काम
3:21 मत्ती 19:28
यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे बोली हो बारह सिंहासन से बैठ कर इसराइल के
नई सृष्टि यानी इंग्लिश में है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब फिर से जो बनाना, फिर
से
बात में नहीं, 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 नहीं वो कुछ और पढ़ो आगे 3:21।
अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले।
ये सुधार करने का समय है। तो ये पत्तों का मतलब है सुधार करना। सुधार जब प्रभु यीशु मसीह सुधार करेंगे ना, तो मनुष्य जाति को वापस संपूर्णता की ओर लेके जाएंगे। अभी क्या मनुष्य जाति गिरी हुई बीमार, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया जाएगा, संपूर्ण। और संपूर्ण शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी नहीं रहती सर, ठीक है। तो ये है पत्ते और फल। फल फल जो है वो फल किसके लिए होते हैं, फल होता है भोजन, भोजन आत्मिक भोजन। इसीलिए बोलते हैं पढ़ लो पहला योहन्ना 5:11 पढ़ लो। तो फल है, जब फल खा के हमें क्या मिलता है, जीवन। हम जिंदा कैसे रहते हैं, फल खा के। तो वो फल होगा फिर क्या, परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन खा के हम क्या रहेंगे, जिंदा यानी अनंत जीवन। पढ़ लो
पहला योहन्ना का
5:11।
और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और वह जीवन उसके पुत्र में है।
अनंत जीवन दिया और वह जीवन उसके
यीशु मसीह के द्वारा है।
इसका मतलब क्या है, अगर तो जीवन प्राप्त करना है तो वो है पुत्र के पास। तो आगे पढ़ लो, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। ये पढ़ लो,
जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है,
जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा वही
है ना। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब है जो जिसके पास पुत्र है, इसका मतलब क्या है, पुत्र का स्वभाव।
अच्छा।
पुत्र के गुण, तो पुत्र में क्या गुण थे, ये पढ़ लो इब्रानिया 1:9।
तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा।
ये है पुत्र का स्वरूप, ये है पुत्र।
और इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया।
जो धर्म से प्रेम रखता है और अधर्म से नफरत करता है वो कौन था, पुत्र। और सारी मनुष्य जाति को यही करना है अगर जीवन प्राप्त करना है, तो पाप से नफरत करनी है और धार्मिकता से प्रेम, तब मिल जाएगा अनंत काल का जीवन। और ये होगा कैसे, इसके लिए एक ही कानून है, मरकुस 12:30-21। ये कानून है जो सबको सीखना है। जो इस कानून को नहीं सीखेगा वो दंड पाएगा और वो दंड है मृत्यु यानी सदा की मौत।
मरकुस
12:30-31।
और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं।
तो ये है प्रेम का कानून, ये प्रेम का कानून। जो नहीं फॉलो करेगा ना, जीवन उसको नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके पास पुत्र नहीं है, उसके पास पुत्र नहीं है। और ऐसे होंगे क्योंकि हिजकियल 47:11 में क्या पढ़ते, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां वो पानी नहीं पहुंचा और वो चंगे नहीं हुए। पढ़ लो 47:11।
वगैरह,
परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वह सारे ही रहेंगे।
तो इसका मतलब क्या है, ये वो लोग हैं जो सुधरेंगे नहीं, जो जीवन का जल लेने से इनकार करेंगे, नहीं चाहिए। यशाया 26:10 भी पढ़ लो, दस
दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वे धर्म को ना सीखेगा, धर्म राज्य में भी वे कुटिलता करेगा और युवा का मास में उसे सूझ ना पड़ेगा।
तो ऐसे जानबूझ के परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले होंगे फिर उनको मिलेगी दूसरी मृत्यु, क्योंकि उनका कैरेक्टर पता किसके जैसा है, पुत्र जैसा नहीं है, किसके जैसा है, शैतान और वो दूत। जो जानबूझ के परमेश्वर के विरोधी बने, परमेश्वर को जानते हुए परमेश्वर के विरोधी बने, ये भी उसी ग्रुप में आ जाएंगे। तो ऐसों का परमेश्वर फिर क्या कर देगा, ये पढ़ लो भजन संहिता 52:3।
तू भलाई से बढ़कर बुराई है और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीत रखता है।
देखो ये कौन है, किसका करेक्टर है, शैतान। तो शैतान के और उसके दूतों का रूप रखने वाले को उसके साथ ही जोड़ दिया जाएगा, जहां वो जाएंगे वहां ही वो भी जाएगा, क्योंकि इनके पास तो पुत्र नहीं है। पुत्र क्या है, प्रेम, धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से नफरत, लेकिन ये तो मानेंगे नहीं। तो इसको एक नमूने में दिखाया है, इनको नमक दे दिया जाएगा, सदा का नाश, दूसरी मृत्यु। भजन उत्पत्ति 19:26 में देख लो ये बात,
लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खम्मा बन गई।
यह है दूसरी मौत, दूसरी मृत्यु। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज सीखा है हमने परमेश्वर की दया से, कृपा से यर्दन नदी का भेद, एक रहस्य जिसमें छिपी है मनुष्य जाति की तस्वीर, और उसके बाद देखा हमने परमेश्वर का चंगा करने का तरीका, जीवन देने का तरीका। सो इसी के साथ परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन।